ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकने वाले सक्षम और उत्कृष्ट जनशक्ति का सरकारी सेवा में प्रवेश आज की जरूरत है। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव का कथन। प्रदेश सरकारों ने प्रदेश सभा बैठकों में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट किए पेश। 71 जिलों के 1130 लोग हैं डेंगू से संक्रमित। और भारतीय राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टेम्पो दुर्घटना में 12 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा कि वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकने वाले सक्षम और उत्कृष्ट जनशक्ति का सरकारी सेवा में प्रवेश आज की जरूरत है। आज काठमांडू में लोक सेवा आयोग के 74वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति यादव ने कहा कि सभी तरह के परिवर्तनों का कुशल व्यवस्थापन कर सकने वाले कर्मचारियों के चयन पर आयोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। मौके पर आयोग के अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी ने कहा कि निजामती सेवा, सुरक्षा, निकाय और संगठित संस्था समेत अन्य सार्वजनिक सेवाओं में कर्मचारियों की भर्ती और चयन को और वस्तुनिष्ठ, समसामयिक और विश्वसनीय बनाने और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए आयोग ने दूसरी रणनीतिक योजना तैयार करके उसे क्रियान्वित किया है। साथ ही इस बात का जिक्र करते हुए कि संघीय निजामती सेवा आयन जारी न हो सकने के कारण संघ प्रदेशों और स्थानीय तहों में कर्मचारी व्यवस्थापन में कठिनाई हो रही है। अध्यक्ष रेग्मी ने संघीय आयन यथाशीघ्र जारी करने के लिए नेपाल सरकार का ध्यानाकृष्ट किया। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विनियोजित बजट की समीक्षा होना जरूरी है। आज संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में हुई एमाले संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष ओली ने कहा कि एमाले जिन मंत्रालयों को चला रही है उनके लिए आवंटित बजट की स्थिति भी देखनी होगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित नेपाली राजदूतावास द्वारा उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में शरीक हुए। समारोह में राष्ट्रपति पौडेल का स्वागत स्विट्जरलैंड के लिए नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी और यहां मौजूद नेपालियों ने किया था। राष्ट्रपति पौडेल कल जर्मनी के दौरे के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जानकारी राष्ट्रपति के स्वकीय सचिवालय ने दी है। प्रदेश सरकारों ने आज प्रदेश सभा बैठकों में आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 के बजट प्रस्तुत किए हैं। बता दें कि गंडकी प्रदेश सरकार ने अगले आर्थिक वर्ष के लिए 32,97,00,00,000 रूपये का बजट सार्वजनिक किया है, जिसमें चालू खर्च के लिए 13,16,00,00,000 और विकास खर्च के लिए 19,51,00,00,000 रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसी तरह कर्नाली प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 31,41,00,00,000 रूपये का बजट सार्वजनिक किया, जिसमें चालू खर्च के लिए 7,57,55,92,000 और विकास खर्च के लिए 18,75,00,00,000 रूपये का बजट आवंटित किया गया है। कोसी प्रदेश सरकार ने 35,27,63,00,000 रूपये का बजट सार्वजनिक किया है, जिसमें चालू खर्च के लिए 14,47,00,00,000 और विकास खर्च के लिए 16,20,00,00,000 रूपये आवंटित किए हैं। वहीं सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार ने कुल 31,62,00,00,000 रूपये का बजट सार्वजनिक किया है, जिसमें चालू खर्च के लिए 11,07,00,00,000 और विकास खर्च के लिए 17,53,00,00,000 रूपये का बजट आवंटित किया है। इसी तरह लुम्बिनी प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 38,97,00,00,000 रूपये का बजट सार्वजनिक किया है, जिसमें चालू खर्च के लिए 11,24,00,00,000 रूपये और विकास खर्च के लिए 24,58,00,00,000 रूपये का बजट विनियोजित किया गया है। वहीं बागमती प्रदेश सरकार ने 60,00,00,000 रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। बता दें कि संघीय सरकार द्वारा हर साल जेठ 15 गते को अगले आर्थिक वर्ष के लिए बजट सार्वजनिक किए जाने की संवैधानिक व्यवस्था है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से आषाढ़ 1 गते और स्थानीय तह का बजट आषाढ़ 10 गते सार्वजनिक करने की संवैधानिक व्यवस्था है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि देश में उपलब्ध स्रोत और साधन मौजूदा संसद और प्रदेश सभा सदस्यों का भार वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज नेपाली कांग्रेस नागार्जुन नगर कार्य समिति द्वारा गरीबी विरूद्ध एकीकृत सहयोग नेपाल नामक संस्था के सहकार्य में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान का संशोधन करके केंद्र और प्रदेशों में सांसदों की संख्या घटाना जरूरी है, ये कहते हुए कि संघीय सरकार में 10 से 12 मंत्री ही बनाए जाने चाहिए। महामंत्री थापा प्रदेशों में भी मंत्री संख्या घटाई जानी चाहिए और प्रदेश निर्वाचन प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं, अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा ने कहा कि निर्वाचन से पहले कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। आज भक्तपुर के सूर्य विनायक में आयोजित शहीद राधेश्याम जोंछे की 12वीं वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस अकेले दम पर निर्वाचन लड़ेगी। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता बिना देश के विकास संभव नहीं है, इसलिए अभी के निर्वाचन प्रणाली में सुधार होना जरूरी है। आज नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा यूनियन प्रवेश कार्यक्रम में नेता डॉ कोइराला ने कहा कि अभी के निर्वाचन प्रणाली में रहे समस्या के कारण किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा है और बार बार सरकार परिवर्तन की श्रृंखला चलने के कारण विकास गति नहीं आ पा रही है। डेंगू रोग के संक्रमण 71 जिलों में फैल चुका है। बीते जेठ 11 गते तक 57 जिलों में फैले डेंगू बहरहाल 71 जिलों में फैल चुका है, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। मंत्रालय अंतर्गत के एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डॉ गोकर्ण प्रसाद दहाल ने कहा कि मौसम परिवर्तन के साथ ही गर्मी के कारण से डेंगू का संक्रमण बढ़ गया है। बता दें कि 71 जिलों में 1130 लोगों में संक्रमण देखा गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के चारों गेट खोले गए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शनार्थी की संख्या बढ़ते देख सभी को सुबह के समय में पशुपतिनाथ के चारों गेट से दर्शन करने के उद्देश्य से आज से चारों गेट खोले गए हैं, ये जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नोएडा के पर्यटकों का वाहन बद्रीनाथ मार्ग पर अलकनंदा नदी में गिर गया। एजेंसी की खबर के अनुसार अब तक उसमें सवार 12 पर्यटकों की मृत्यु की सूचना है। हालांकि प्रशासन अभी मरने वालों की स्पष्ट संख्या की जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर दुख जताया है। रुद्रप्रयाग से लगभग 6 किलोमीटर पहले श्रीनगर की तरफ मुख्य मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। पर्यटक टेम्पो ट्रेवलर से चौपता घूमने जा रहे थे, कुछ को चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल 6 पर्यटकों को हेली रेस्क्यू कर हायर सेंटर ऋषिकेश भेजा गया है। दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है, विस्तृत विवरण जुटाया जा रहा है। हादसे के शिकार कुछ यात्री दिल्ली NCR के भी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन व SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिला अधिकारी को घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों के साथ है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकने वाले सक्षम और उत्कृष्ट जनशक्ति का सरकारी सेवा में प्रवेश आज की जरूरत है। उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव का कथन। प्रदेश सरकारों ने प्रदेश सभा बैठकों में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट किए फेस। 71 जिलों के 1130 लोग हैं डेंगू से संक्रमित और भारतीय राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टेम्पो दुर्घटना में 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।